मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 9 अप्रैल 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक की होने वाली क्लासेज के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं सोनू कुमार, आपका गाँव है गंगौर जिला मधुबनी बिहार से, और लोकेश पवार, आपका गांव है पाली जिला सागर मध्य प्रदेश से। दोस्तों आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे कुछ जो कानून हैं जिनके बारे में अभी आप सब सुन रहे हैं उन पर कुछ बातें करना चाहूँगा, जिसमें आवश्यक सेवा मेंटेनेंस अधिनियम है, आवश्यक वस्तु कानून 1955 है, इन सब पर कुछ बातें करना चाहूँगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है कि बाद में मुझे स्मरण न रहे कि कल गजटेड हॉलीडे है, यानी कि कल डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा और इसके बाद फिर सैटरडे संडे को भी डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि आप सबसे मेरी 3 दिनों के बाद मुलाकात हो सकेगी, इसे आप ध्यान में रखें। लेकिन जो फ्राइडे और सैटरडे को आपको प्रेस क्लिपिंग्स मिलती रही हैं, जो आपको योजना और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल्स मिलते रहे हैं, वो यथावत मिलते रहेंगे। आपको बकायदे मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर आंसर राइटिंग के लिए भी क्वेश्चन मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। बस डेली ऑडियो लेक्चर डेफिनेटली 3 दिनों के बाद सोमवार को ही आप लोगों को उपलब्ध हो सकेगा। मित्रों इस बीच में आप जो न्यूज़ सुन रहे हैं, चाहे वो चैनल्स पर हो या जो अखबार हो वहाँ आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि न्यूज़ का केंद्र केवल कोरोना वायरस है। अगर हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आफ्टर ऑल कोरोना वायरस से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना, ये सोचने की बात है कि कितने क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ एक वायरस या बीमारी को लेकर के चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस की ज्यादा संख्या नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यदि आप इसे व्यापक और प्रशासकीय दृष्टि से देखेंगे, आर्थिक दृष्टि से भी देखेंगे, सामाजिक दृष्टि से भी देखेंगे, भावनात्मक दृष्टि से भी देखेंगे, तो आपको लगेगा कि इससे ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से आप देखिए कि लगातार ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि कितनी बुरी स्थिति अर्थव्यवस्था की होगी, केवल भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की, बल्कि भारत और चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में तो लोग थोड़े से आश्वस्त भी हैं कि ये थोड़े से ठीक ठाक भी रहेंगे, है ना। आप देखिए कि टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी होगी, है ना, हॉस्पिटैलिटी होटल वगैरह की इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से मार खा जाएंगे। हमारे जो लघु मध्यम छोटे उद्योग हैं वो बहुत बुरी तरह से इससे पर नुकसान उठाएंगे, हानि उठाएंगे। तो अर्थव्यवस्था को लेकर के एक बहुत बड़ा संकट हमारे सामने है और आप फिर देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कोशिश कर रही है, आगे चल करके क्या कोशिश करेगी। तो है मामला कोरोना वायरस का, लेकिन वो आपकी इकोनॉमिक्स के लिए भी आप देखिए कि क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा है। लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, इस डर को आप कैसे संभालेंगे। तो आपको पता लगा कि आपका जो एथिक्स का, जो मॉरलिटी का जो पेपर है उसके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। थर्ड पेपर जो जनरल स्टडीज मेंस का है जिसमें आपदा प्रबंधन, तो कोरोना वायरस तो भयानक किस्म का राष्ट्रीय आपदा ही घोषित कर दिया गया है और वो है भी। तो आप देखिए कि कैसे प्रशासन काम कर रहा है, कैसे आपदाओं का प्रबंधन किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि ये एक प्रैक्टिकल आस्पेक्ट आपको पूरे के पूरे देश में दिखाई दे रहा है कि आपदा प्रबंधन कैसे किया जाता है। दोस्तों कभी संभव हुआ तो मैं आपदा प्रबंधन पर आपसे अलग से बातें करूंगा और अभी जो घटनाएं घटित हो रही हैं उदाहरण के माध्यम से मैं उसे, वो जो सिद्धांत है आपदा प्रबंधन के, जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं उन पैरामीटर्स पर कसकर बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल चूंकि वक्त इतना नहीं है तो मैं इसे अभी वायदा करके छोड़ता हूं, लेकिन हो सकता है कि वायदा ऐसा हो जो मैं निभा ना पाऊं। लेकिन डेफिनेटली जो हमारे ऑनलाइन जो स्टूडेंट हैं उनको डेफिनेटली इसके आधार पर मैं कुछ न कुछ उपलब्ध कराने की हर संभव कोशिश करूंगा, बल्कि उपलब्ध कराया ही जाएगा। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मेरे जो डेली ऑडियो लेक्चर्स के श्रोता हैं उनको भी मैं कुछ न कुछ इसके बारे में बता सकूं। तो अब आप देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल सीधे कह दिया कि यह सामाजिक आपातकाल है, सामाजिक आपातकाल है। और बकायदे उन्होंने कहा कि ये युगांतरकारी घटना है। अब उन्होंने कहा सामाजिक आपातकाल, तो आपको यह भी सोचना चाहिए कि ये किस तरीके से सामाजिक आपातकाल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैसे कह दिया है। डेफिनेटली अभी आप देखिए कि लॉकडाउन की सिचुएशन में क्या हो रहा है, पूरे के पूरे परिवार लोग अपने अपने घरों में बंद हैं 21 दिन के लिए और आगे अभी क्या होगा हम नहीं जानते हैं, उनकी सारी एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं। है ना, कुछ लोग मानसिक रूप से बड़े अपने को डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, कुछ लोग आनंद मना रहे हैं, लोग पहली बार परिवार के साथ इतना वक्त गुजार रहे हैं, आपस में मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो गया है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो लोगों के दिमाग में जीवन को जीने की एक नई पद्धति के प्रति शायद कोई सोच विकसित कर दे, समाज के जो हमारे संबंध हैं वो शायद नए तरीके से हमारे सामने आए। जैसे आप वर्क फोर्स ही देख लीजिए, वर्क एट होम, हो सकता है कि आगे चलकर कंपनी से ही पसंद करने लगे कि भैया वर्क एट होम कीजिए। आप शैक्षणिक क्षेत्र में आप देखिए कि लगभग लगभग ज्यादातर जो अच्छे स्कूल हैं उन सब लोगों ने बकायदे ऑनलाइन क्लासेस लगानी शुरू कर दी, तो समाज में ये भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है शैक्षणिक क्षेत्र में कि शिक्षा में जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसका इम्पैक्ट बढ़े। तो आप देखिए कि इसका एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रभाव भी पड़ सकता है, इसीलिए आप इसे सामाजिक आपातकाल भी कह सकते हैं, इसे युगांतरकारी घटना भी कह सकते हैं। तो इन सारी बातों पर आपको नजर रखना होगा ताकि जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएं तब आप उन्हें हल करके बता सकें कि अच्छा इसका मतलब यह है। तो दोस्तों, भले ही घटनाएं छोटी छोटी घटित हो रही हैं, आपको छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में चीजें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन मैं आपको सतर्क करना चाहूंगा कि आप उन पर बकायदे ध्यान दें। अभी आप देखिए कि कल न्यूज में आपने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से आदेश जैसा दिया है कि जो इसके लिए टेस्टिंग होगी कोरोना वायरस के लिए, जो लगभग 4,500 रुपए की होती है, इसको बिल्कुल फ्री किया जाए। मतलब आप किसी को भी टेस्टिंग करने से इसलिए मना नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा है कि वो ट्रेनिंग मॉडल शुरू कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बकायदे कहा है कि जिनके भी 5,00,000 रुपए से अधिक का रिफंड बाकी है इनकम टैक्स में, आप उनको फटाफट आप पैसा वापस कीजिए। 14,00,000 लोगों को सोचिए कि रिफंड किया जाएगा, और ये जो 14,00,000 रुपए जो रिफंड किए जाएंगे तो कैलकुलेट किया गया है कि मार्केट में 18,000 करोड़ रुपए आ जाएगा। तो मार्केट में जब 18,000 करोड़ रुपए आ जाएगा तो थोड़ी सी डिमांड जनरेट होगी वस्तुओं की, जब डिमांड जनरेट होगी तो थोड़ा सा उत्पादन कार्य बढ़ेगा। तो आप देखिए कि ये जो भले ही छोटे छोटे निर्णय लिए जा रहे हैं लेकिन इनका जो प्रभाव है वो किस तरीके से व्यापक है। और उसी के तहत न्यूज में आपने सुना कि लगभग 1,00,000 लोग तो ऐसे हैं जो लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों से जुड़े हुए हैं। इन 1,00,000 लोगों को अगर 5-5 लाख रुपए मिल जाएगा तो इस जो हमारे जो लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग हैं इन उद्योगों को थोड़ा सा सहारा मिलेगा। तो मेरे कुल कहने का मतलब है कि अभी जो भी सरकार कदम उठा रही है उनको थोड़ा सा ध्यान से गहरे में जाकर के समझने की कोशिश कीजिए ऐसा क्यों किया जा रहा है, नंबर एक, और इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको आप स्ट्रेट तरीके से सतही तरीके से बस मत लीजिए, याद कर लिया कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया। बिल्कुल जीवन का अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है जीवन का अधिकार, और कोरोना वायरस से हम लड़ रहे हैं, अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं। उस क्या हमारा हमारी टेस्टिंग इसलिए ना हो क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, और एक ऐसी स्थिति में जबकि रोजगार छूट गए हैं, काम नहीं मिल रहा है, और ऊपर से पता लगा टेस्टिंग का भी खर्चा हम दें। तो आप देखिए कि कैसे वो मौलिक अधिकार से जुड़ गया है जीवन का, यहाँ कोरोना से जुड़ा हुआ है टेस्टिंग का अधिकार। तो इन सबको आपको थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेट करके देखना होगा, तभी आप ये जो स्थितियां आई हैं सिविल सर्विस के लिहाज से उन्हें अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। दोस्तों, ये मुझे थोड़ी सी हिदायत के रूप में, निर्देश के रूप में आप कह लीजिए कि कुछ बातें कहनी थी। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और आज के मुख्य विषय के तहत मैंने शामिल किया है आवश्यक वस्तु कानून 1955। अभी आप खासकर 3 कानूनों के बारे में सुन रहे होंगे। एक की चर्चा मैंने की, आवश्यक वस्तु कानून जिसे कहते एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, है ना, 1955 में बना था, 1 अप्रैल 1955 में। न्यूज में आपने सुना होगा कुछ राज्यों ने, जैसे कि मध्य प्रदेश ही है, उसने जो अपने यहां कानून लागू किया, आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, इंग्लिश में है ये एस्मा, इसको कहते एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, ये 1968 में आया था, 1968 में। इसी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये भी आप सुन रहे हैं। तो मैं फिलहाल आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के जितने भी एक्ट के बारे में आप सुन रहे हैं, प्लीज आप उन सब पर तैयारी करें, अलग से तैयारी करें। आपको केवल सुन करके और बस खत्म नहीं कर देना है कि ठीक है, आपको जानना चाहिए कि ये एक्ट क्या है, क्यों लागू किए जाते हैं, क्योंकि आप प्रशासक बनने जा रहे हैं और जब आप प्रशासक बनेंगे तो ये एक्ट आपको लागू करने पड़ सकते हैं। इन पर मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं आवश्यक वस्तु कानून 1955 पर। दोस्तों, 1955 में बनाया गया था, और याद रखिए पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया एक्ट है, ये स्टेट का कानून नहीं है, ये संसद के द्वारा पारित किया गया है। देखिए, नाम से ही बहुत स्पष्ट है कि जब भी देश में कोई आपात स्थिति आती है, आपात स्थिति केवल यानी कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति है, सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, कुछ और भी, जैसे अभी कोरोना वायरस है, एक बिल्कुल अप्रत्याशित आपदा आ गई है, तो जब भी आपदा की स्थिति आती है तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, वो लोगों को उपलब्ध होती रहे यह सुनिश्चित कराने वाला जो कानून है वो आवश्यक वस्तु कानून है। जब हम कहते हैं आवश्यक वस्तु, तो आवश्यक वस्तुओं में क्या है, बकायदे इसकी एक लिस्ट है और सरकार इसमें परिवर्तन भी करती रहती है। जैसे अभी आप सोच करके देखिए कि सरकार ने 14 मार्च 2020 को अभी आवश्यक वस्तु में दो चीजें शामिल की, हालांकि आप अदरवाइज सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे आवश्यक वस्तु हो सकती है। आप बताइए, मास्क आवश्यक वस्तु हो सकती है, हैंड सैनिटाइजर जिसमें आप हाथ में लगा करके अपने हाथों को साफ करते हैं, क्या यह आवश्यक वस्तु है? नहीं है ना, लेकिन कोरोना के संदर्भ में यह आवश्यक वस्तु हो गई है। तो याद रखिए कि सरकार हमेशा इसकी लिस्ट को अपडेट करती रहती है, किसी भी नई वस्तु को जरूरत के हिसाब से इसमें डाल सकती है, और कुछ चीजें होती हैं जो आवश्यक होती ही हैं। अब आप नहीं कह सकते कि चावल और आप गेहूं को आवश्यक वस्तु नहीं मानेंगे, आप गुड़ और चीनी को आवश्यक वस्तु नहीं मानेंगे, आप दवाई को आवश्यक वस्तु है, ईंधन है, दालें हैं, खाद्य तेल है, ये सब की सब आवश्यक वस्तुएं हैं। तो सरकार ये सुनिश्चित करती है कि इन वस्तुओं के तीन देखिए स्तर होते हैं, इनका उत्पादन बाधित नहीं हो, प्रोडक्शन होते रहना चाहिए, इनकी सप्लाई होते रहना चाहिए। जब मैं सप्लाई की बात कर रहा हूं तो उसको परिवहन से समझ लीजिए कि कारखाने से वो सामान रिटेलर तक पहुंचे, आपूर्ति श्रृंखला है, और इसी तरह से फिर है इसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कंज्यूमर तक ये पहुंचना चाहिए। और केवल पहुंचना ही नहीं चाहिए बल्कि सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि उचित दाम पर पहुंचे। ऐसा नहीं है कि अब चावल जो अभी 20 रुपए किलो मिल रहा था, अब चूंकि मिलना बंद हो गया है तो 200 रुपए किलो बिकेगा। इसलिए सरकार को इस कानून के तहत अधिकार है कि वो किसी भी वस्तु का जो न्यूनतम मूल्य है घोषित कर सकती है कि आप इसे इतने में ही बेचेंगे, और साथ ही साथ बाकायदे जो जमाखोरी और कालाबाजारी है उसके खिलाफ सरकार को इसके तहत बहुत से अधिकार मिल जाते हैं। यानी कि आप वस्तुओं का स्टॉक नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर वस्तु का ही स्टॉक कर सकते हैं, इतने क्वांटिटी में ही कर सकते हैं, और ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकते, यानी कि वस्तु को निर्धारित मूल्य से आप ज्यादा नहीं बेच सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि जमाखोरी और कालाबाजारी से वस्तुओं के मूल्य में कई गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है, या कह लीजिए कि आर्टिफिशियल शॉर्टेज की स्थिति तैयार कर दी जाती है। तो दोस्तों, ये जो आवश्यक वस्तु कानून है 1955 का, इसके बारे में आपको एक अच्छी सी तैयारी कर लेनी चाहिए। दो के बारे में मैंने और कहा कि आवश्यक जो इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट है, और साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसके बारे में भी आप लोग थोड़ी सी तैयारी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग का सवाल है, वो सब मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इसी में से रीना गिरी को विशेष रूप से धन्यवाद, जो गोरख उत्तर प्रदेश से हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब 3 दिनों के लिए मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, ईश्वर से इस प्रार्थना के साथ कि आप सब सुरक्षित रहें, अपना अपना ध्यान रखें, धैर्य बनाए रहें, मानसिक मजबूती को बिल्कुल जरा सी भी हिलने न दें, और कोरोना वायरस के संबंध में जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं, जिन सावधानियों को भी बरतना है, बकायदे उनमें कोई लिबर्टी न लें, उन सावधानियों पर पूरा ध्यान रखें, और अपनी प्रिपरेशन में, एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में रत्ती भर भी ढील न आने दें। यह एक प्रकार से आपके लिए यूं कह लीजिए कि परीक्षा की घड़ी है, कि ऐसे माहौल में आप अपने को कितना मजबूत बनाकर अपने कर्म पथ पर आगे रत रह सकते हैं, चल सकते हैं। दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।